आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए हमारा सेकंड सेशन ऑफ द डे रिस्क मैनेजमेंट रिस्क की कुंजियां नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुय्यिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से हम आज से एक नई सीरीज शुरू करेंगे और उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट रिस्क की कुंजियां। सवाल पैदा होता है कि इस मौजू पे बात करने की ज़रूरत क्यों है, तो इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज के दौर में बहुत सारे लोगों की तवज्जो का मरकज रिस्क हासिल करना है। पहले तो ये सिर्फ मर्दों का मसला था, घर के कवाम का इशू था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इशू ना सिर्फ ये है कि औरतों का बल्कि बच्चों का भी इशू बनता जा रहा है। और बहुत सारे लोगों का ये बातिल गुमान है कि कुरान सुन्नत की तालीमात की पाबंदी रिस्क में कमी का जरिया बनती है। मसलन किसी को आप मशवरा दें कि आप ये काम ना करें कि जिसमें दीन की को हाथ टूटे, तो वो कहते हैं फिर कपड़े नहीं बिकते। तो इस तरह से महसूस होता है कि जो जितना दीन के करीब होगा, अल्लाह और रसूल की बात के करीब होगा, उतना उसका बिजनेस फ्लॉप होगा। और आज आप देखिए कि किस तेजी से हमारी ताजिर बिरादरी में और हमारे मार्केटिंग स्टाइल में अल्लाह की हदें टूटती हैं। कपड़े पहले भी बिक जाते थे, लेकिन अब ऐसे लगता है कि नहीं बिक सकते जब तक के हम इसमें किसी हद को क्रॉस ना कर जाएं। और इससे भी ज्यादा ताज्जुब और दुख की बात क्या है कि कुछ बज़ाहर दीनदार लोग भी यही एतकाद रखते हैं कि माशी खुशहाली और आसूदगी के हसूल के लिए किसी हद तक इस्लामी तालीमात से मुंह फेरना पड़ेगा। हकीकत यह कि ऐसे लोग नादान हैं, बेखबर हैं इस हकीकत से। बाखबर होने के बावजूद ये बात फरामोश कर चुके हैं कि कायनात के मालिक और खालिक अल्लाह जल्ला जलालहू हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह इस दीन में दुनियावी मामलात में कामयाबी का हमें पैगाम दिया है, इसी तरह आखरत में कामयाबी भी अल्लाह ताला ने हमें कुरान में दी है। उसने दुनिया भी दी, आखरत भी दी। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार की दुआ सिखाई कि दुनिया में भी रब से हसना मांगो और आखरत में भी मांगो। तो दुनिया का हसना माले हलाल है, नाजायज चीज कभी भी हसना नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने हमारे इस दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मनी मैनेजमेंट से मुतल्लिक है। कुरान पाक का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर आयात को लग करके देखें तो माल से मुतल्लिक है। सबसे तवील आयत कुरान पाक में जो है वो माल से मुतल्लिक है। आयते दैन कुरान में मौजूद है, प्लेच और मॉर्गेज पे कुरान ने बात की, सूद के ऊपर कई आयात कुरान में नाजिल हैं, रिश्वत का तस्करा कुरान में है और रिस्के हलाल का तस्करा कुरान में है। तो क्या पता चला कि अल्लाह के इस कलाम में हमारे लिए एक पूरी गाइडलाइन मौजूद है कि हम अल्लाह ताला की इस किताब को पढ़ते जाएं और उससे दुनिया का भी रिस्क लेते जाएं और आखरत का भी रिस्क लेते जाएं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से अक्सर एक दुआ होती थी, हजरत अनस से ये रिवायत हम तक पहुंचती है, कान अक्सर दुआ नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। कुरान में भी है और अल्लाह के नबी भी यही दुआ मांगा करते थे कि हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दीजिए और आखरत में भी भलाई अता कीजिए और हमें आग के अजाब से बचाइए। क्या पता चला कि अल्लाह के हाथ में दुनिया भी है और आखरत भी है। कस्बे मुआश के मामले में यानी टू अर्न मनी विद हलाल मीन्स, इतना खूबसूरत काम है कि अल्लाह के बरगजीदा रसूलों ने भी माल कमाया। अल्लाह ताला ने मर्द को ये जिम्मेदारी दी है, अर रिजाल कवामूना अल निसा कहकर पुकारा कि तुम अपने घर में माल लाने के जिम्मेदार हो और जब लाने लगो तो फिर अल्लाह से मदद मांग लो। और अल्लाह ताला इंसान को अंधेरों में नहीं छोड़ते, वो अल हादी भी हैं। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज से हम इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें रेफरेंस के साथ मिल जाती हैं कि उनको इख्तियार करने से रिस्क की कमी दूर हो जाती है, गुर्बत पीछे चली जाती है, थोड़े रिस्क में बरकत होने लगती है और उस रिस्क के हलाल को खाकर औलादें फरमाबरदार होने लग जाती हैं। और अगर हम इनको समझ जाएं तो कभी ना छोड़ें और अल्लाह ने तो खुद अपने बारे में जो बात हमें बताई है, अगर आप देखें कुरान पाक में, अर रज़ाक ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बहुत ज्यादा रिस्क अता फरमाने वाले, बहुत कुव्वत वाले, यानी अल्लाह ताला के 99 नेम्स ही को अगर सामने रख लें तो उसमें कई नाम सिर्फ रिस्क से मुतल्लिक हैं। अल्लाह ने देना है उसी से लेंगे। अगर आप और मैं अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, उसके हुक्मों को मजबूती से थाम लें, तो वो हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। तो ये मौजू इंशाल्लाह ताला हमारा दिल भी खोलेगा, हमारा दिमाग खोलेगा, लोगों के लिए हर जानब से अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे खोल देंगे और आसमान से खैर बरकात नाजिल फरमाएंगे अगर लोग अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे। और हम 30 मुख्तलिफ चाबियां खोलेंगे जिसके लगाते ही रिज़्क़ के दरवाजे इंशाल्लाह खुलते जाएंगे। और मुझे जरूरत नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ कहूँ, इसमें से हर बात का रेफरेंस आयत या हदीस की सूरत में आपके साथ शेयर करूंगी। करना क्या है, नियत कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे पेट में रिज्क हलाल जाए और रिज्क का मामला जो तूने अपने हाथ में लिया है वो तू ले ले, मुझसे अपने काम ले ले। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ जो शुरू में ही आपको बता दूँ, हर वो हदीस यहाँ रखी जाएगी जो मुस्तनद ज़राए से हम तक पहुँची, बशरी तकाज़ों के तहत जो भी सही रिवायत है वही आपके सामने रखूंगी। और चंद किताबें भी इंशाल्लाह इन पे आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें रिस्क की कुंजियाँ डॉक्टर फजले साहब की किताब भी है और कई बहुत खूबसूरत किताबें मौजूद हैं। अहादीस का एक कसीर हिस्सा किताबुल बुयू की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन चीज़ों पे ईमान लाने की और कोशिश करके उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हमारा दूसरों के ऊपर गुमान होता है कि कोई भी मेहनत करेगा तो उसको माल मिलेगा, इसी तरह हम इस यकीन के साथ पहली चाबी का जिक्र शुरू करेंगे कि जिसने ये चाबी लगा ली इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुबहाना ताला उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोलेंगे। और अल्लाह ताला कादिर भी हैं, कदीर भी हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे हक बात की तौफीक अता फरमाए। तो पहली चीज जिसके ऊपर इस वक्त मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी, फर्स्ट की टू प्रोविजन, रिस्क की पहली चाबी क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। इस्तिग़फ़ार और तौबा करना रिस्क के दरवाजों को खोल देता है। कैसे? देखिए, जिन असबाब के जरिए अल्लाह ताला से रिस्क तलब किया जाता है, इनमें एक अहम सबब अल्लाह ताला के हजूर इस्तिग़फ़ार और तौबा करना है। लेकिन ये याद रखिएगा, इस्तिग़फ़ार और तौबा का ताल्लुक सिर्फ जुबान से नहीं है। सिर्फ जुबान से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना, अल्लाह तौबा मेरी तौबा, ये वो चीज नहीं है। तौबा इस्तिग़फ़ार क्या होती है? अपने गुनाहों पे शर्मसारी। सिर्फ जुबानी इस्तिग़फ़ार का असर ना दिल पे नजर आता है ना अमाल में नजर आता है। और इस्तिग़फ़ार कौलो फेल दोनों से गुनाहों की माफी की तलब का नाम है। तौबा इस्तिग़फ़ार क्या होती है? पिछले गुनाहों पे माफ कर दे, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। लिख लीजिए, जम है सच्ची पक्की तौबा इस्तिग़फ़ार क्या है कि अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ कर दे और आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। ये है वो पैगाम जो आपको मुझे तौबा और इस्तिग़फ़ार की सूरत में दिया। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अद नदमुत तौबा, नदामत तौबा का दूसरा नाम है। शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट, रिग्रेट, मैं परेशान हूं, अल्लाह मैंने क्या किया, अल्लाह ताला मैंने आपको नाराज कर दिया। यानी आप में से, मेरे में से हर एक सोचे, क्या मैं कुछ गुनाह करती हूँ? मुझसे गुनाह हो जाते हैं? देखिए, गुनाह का एहसास ही नेक को होता है। जो फाजिर है, फासिक है और मुनाफिक है, वो तो साफ कहेगा, मैंने तो कभी नहीं किया ये कोई गुनाह, ये तो ऐसे ही है। हमने गुनाह के नाम बदल दिए, ये तो मजबूरी है, ये तो रस्म है, ये तो फैशन है, ये तो जरूरत है, और ये तो सब करते हैं। तो याद रखिए, थोड़ा सा हमें तौबा इस्तिग़फ़ार के मामले को समझना है कि जब गुनाह के बाद शर्मिंदगी हो, उसी के बाद ही तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफीक मिलती है। ये भी एक जेम जो है, मैं भी बोलने लगी हूँ। बंदा गुनाह करे और अल्लाह से डरे, अल्लाह माफ़ कर देगा और आइंदा उसको बचा लेगा। लेकिन जब बंदा गुनाह करे और डरे नहीं, बल्कि दलाइल पेश करे, लॉजिक्स दे, लीगलाइज करे, जस्टिफाई करे अपने सिंस को, तो ऐसा बंदा हकीकत में गुनाहगार है। आदम और इबलीस का किस्सा कुरान पाक के बिल्कुल आगाज में ही हमें मिल जाता है। दोनों सिंबल थे, किस चीज के? कि इंसान हो या इब्लीस हो, गुना दोनों से होगा। गुना दोनों से होगा, फर्क सिर्फ इतना है, जैसे आप देखे कि इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था उसका इनकार किया। हाँ, मैं क्यों करूं? यानी लंबी बात है इसलिए आपको पीछे से पता ही है, तो फिर मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करती। यानी उसने सजदा नहीं किया, ये उसका गुना था, खता थी, उसने अल्लाह के हुक्म के आगे अकल इस्तेमाल की, ये उसका गुना था। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का फल चखने से रोका गया था, लेकिन शैतान के बहकावे में आ गए और उसकी कह लीजिए कि टेम्पटेशन में आ गए तो चख लिया। फर्क क्या है इसके बाद? इब्लीस ने गुनाह किया और उसके बाद अकड़ा, दलायल दिए। आप चाहें तो सूरत अल अराफ का दूसरा रुकू पूरा पढ़ लीजिए, आपको वो सारे रवैये उसमें मिलेंगे, और इंशाल्लाह हम दौरे कुरान में जब पहुंचेंगे इस बारे पे तो बात करेंगे कि क्या गुनाह के बाद इब्लीस की कैफियत थी। उसने कहा ना खैर मिनहु, मैं तो मिट्टी से बेहतर हूं, और आपने मुझे ये कहा, और अल्लाह ही पे बातें नाउस बिला डाल दी। तो अल्लाह ताला ने इब्लीस का रवैया भी रखा, और दूसरी तरफ जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा से वो फल चखा गया तो फौरन कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो नोट कीजिएगा कि तौबा इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक सिर्फ जुबान से नहीं, इसका दावा करने ले आज बड़े लोग हैं, दिन में सौ सौ बार पढ़ते हैं अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तस्बीह पे पढ़ते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, कुछ गुनाह कर भी रहे होते हैं और फिर भी कह रहे होते हैं कि मैं नहीं करूंगा। देखिए इसका एक ठेठ सा तर्जमा समझ लीजिए तौबा इस्तग़फ़ार का, ए अल्लाह पिछला माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। देखिए दो लफ्ज है ना, एक तौबा और एक इस्तग़फ़ार, दोनों में यही रब्त है। गफ़रा कहते हैं छुपाने को, टू कवर, ए अल्लाह मेरे पिछले छुपा दे, मेरी बीवी को ना पता चले मेरे गुनाह, मेरे शोहर को ना चले, मेरे दोस्तों मेरे साथियों मेरे बच्चों पे मेरे ऐब ना खोलना। वह तू बुई लई, और अब तेरी तरफ आ गई हूं, आइंदा से हाथ पकड़ ले। जब बंदा इस शर्मिंदगी के एहसास के साथ अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ता है ना, तो अल्लाह ताला उसका हाथ थाम लेते हैं। और याद रखिए कि गुनाह को उसकी कबाहत की वजह से छोड़ना, ये है तौबा। ये नहीं कि अब गुनाह करने की तौफीक ही नहीं रही, बूढ़े हो गए हैं तो अब ख्वाहिशात ही चली गई, बीमार हो गए हैं तो अब वो गुनाह होता ही नहीं है। नहीं, गुनाह को गुनाह की बुराई समझकर छोड़ना, और दूसरी बात है अपनी गलतियों पर नादिम होना, और तीसरी चीज लिख लीजिए आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म करना। चार चीजें हैं, पिछले पे शर्मिंदगी, मौजूदा हालत में अज़्म कि अब नहीं करना, और मुस्तकबिल के लिए आइंदा नहीं करूंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे बेहतरी की कोशिश करूंगी। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल्स हैं, हमारा एक बहुत खूबसूरत सा सिलसिला है दिल की इस्लाह के नाम पर, किताब है, ऐप पे भी मौजूद है, नूरुल कुरान के बुक्स के अंडर आप देख सकते हैं, उसमें जाकर तौबा इस्तग़फ़ार का टॉपिक पढ़ लीजिए। जब तक दिल बीमार नहीं होता बंदा इस्तग़फ़ार करता रहता है, और अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में इसका बहुत ही प्यारा तज़किरा किया है। जो कुरान पाक की सबसे प्यारी आयात मुझे लगी और मैंने आपसे शेयर की, वो सूरत नूह की आयत नंबर 10 से 12 है। इन आयात में अल्लाह ताला एक बंदे को कैसे उसके गुनाहों का एहसास दिलाते हैं, कैसे एक बंदा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है कि अल्लाह ताला तेरा रिस्क खाकर तेरी ना मानूं, तूने जो मुझे दिया मैं उसको पीछे डालकर अब सिर्फ अपनी मर्जियां करता फिरूं, तो ये दुरुस्त नहीं है। आपने मैंने इन आयात को सुनना है और इस सोच के साथ सुनना है कि क्या वाकई मैं अपने आप को अल्लाह ताला की निगाहों में महसूस करती हूँ। और याद रखिए कि ये वो हिस्सा है कुरान पाक का कि जो इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि जब बंदा सिदके दिल से अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होता है तो अल्लाह ताला उसको क्या देते हैं, देखिएगा। फकुल तुस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा ही माफ करने वाला है। यानी हजरत नूह का पीछे से तस्करा चल रहा है और उसके साथ ही तौबा और इस्तिग़फ़ार की बात आ गई। हुक्म क्या हो रहा है कि अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम इदरारा, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन व बनीन व यज अला लकुम जन्नातिम व यज अला लकुम अनहारा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। और साथ ही कह दिया कि मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, तुम्हें क्या हो गया? तुम अल्लाह के लिए किसी वकार की तवक्को नहीं रखते। आयात के इस मजमूए से क्या पता चला कि जितना बंदा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी तलब करता है, अल्लाह ताला उसको उसके बदले में ना सिर्फ ये है कि रिस्क देते हैं, बेटे देंगे, माल देते हैं, जन्नात हैं, नहरें हैं और आसमान से बारिशें होती हैं। हजरत हसन बसरी रहमहुल्ला माजी की एक बहुत ही प्यारी शख्सियत गुजरे, उनकी तरफ एक बात मंसूब की जाती है कि उनके पास लोग मुख्तलिफ मसाइल का हल लेने आते थे। एक शख्स आया और उसने कहा कि हसन साहब, मेरी एक मजबूरी है, मुश्किल है और आप उसका मुझे जवाब दे दीजिए। और वो क्या है कि रिस्क की कमी है, बारिश नहीं हो रही और फसल को बारिश की जरूरत है, तो मुझे बताइए मैं क्या करूं। कहने लगे कि जाओ और इस्तगफार करो, अपने गुनाहों पे इस्तगफार करो। वो शख्स चला गया। थोड़ी देर गुजरी, एक और शख्स आ गया। कहने लगा कि इमाम साहब, या जो भी उनका टाइटल दिया होगा, औलाद नहीं है, माल भी कम है और बेटे नहीं है, कोई वजीफा बताइए। यानी ये सब वजीफे पूछने वाले हैं। खैर, कहने लगे जाओ और इस्तगफार करो। एक और आ गया, कहने लगा कि खेतों में पानी की जरूरत है। कहने लगे इस्तगफार करो। अब वो तो चले जा रहे हैं, एक शख्स इनके पास बैठा है, वो कहने लगा कि ये क्या किया आपने, सबको एक ही दवा दे दी, जैसे हम कहते हैं ना लाल गोली लाल शरबत देना, क्या वो सबको आपने एक ही जुमला कहा? तो कहने लगे, क्या तूने सूरत नूह का ये हिस्सा नहीं पढ़ा और यही आयतें जिस वक्त हमारे सामने है ये पेश की कि इस्तगफार से ये सब कुछ मिल जाता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जब एक इंसान इस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला उसके साथ कितना नरम मामला करता है। आप देखिए कि जब आप अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त रखेंगे और गुनाहों से मुआफी तलब करेंगे, जुबान से भी और अमल से भी, दोनों से तलब करेंगे, फिर अमल भी करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ करेगा। लेकिन एक जुमला नोट कीजिएगा, अमल की नीयत के बगैर फक्त जुबान से गुनाहों की माफी तलब करना, ये झूठों का शेवा है। इमाम नवी रहमहुल्ला, जिन्होंने सही मुस्लिम की शरह लिखी, वो फरमाते हैं कि गुनाह से तौबा की शराइत, इस गुनाह को छोड़ देना, इस पर नादिम होना और आइंदा गुनाह ना करने का अजम रखना। क्या पता चला, तौबा जो है ना, ये पूरी नहीं होती जब तक कि आप अगली जिंदगी में नेकियों की नीयत ना कर लें। और इससे ही आप अपनी जिंदगी में इस चीज को महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए खैर के रास्ते खोल देता है। और फिर अगली बात याद रखिए, देखिए एक छोटी सी बात समझ लेंगे तो इस तरह फायदा होगा। माँ बच्चे की मिसाल से बात बड़ी अच्छी समझ आती है। माँ के दिल में बच्चे के लिए प्यार है, इससे तो किसी को कोई मफर नहीं है, और जो माँ प्यार कर सकती है वो कोई नहीं करता। प्यार के बावजूद भी कभी कभी बच्चे से नाराज हो जाती है, क्योंकि बच्चा बात नहीं मान रहा, सब कुछ दे भी दिया फिर भी जिद्दें की जा रहा है। अब माँ गुस्से में आकर कहती है कि अब मेरे से बात ना करना। अब बच्चा क्या सोच रहा है कि माँ मेरे से बात नहीं कर रही, लेकिन वजह क्या है? बच्चे का वो गुनाह। बच्चा वो अपना जुर्म छोड़ दे, अपनी बुरी आदत छोड़ दे, माँ ठीक हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह रिस्क की कमी एक मुसीबत है, एक तकलीफ है, एक आजमाइश है। और जब भी बंदे पे ये आए तो बंदे को क्या सोचना है? सूरत शुरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अईदीकुम। तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है ना, ये तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा है, यानी तुम्हारे अपने किसी गुनाह की सजा होती है। मिसाल ले लीजिए, यहां हमारा जो मौजू है कि माल की कमी है, कारोबार में नुकसान हो गया, डील होते होते रह गई, कस्टमर नहीं आ जाए, कोई मशीनरी टूट गई, उस पर खर्चा हुआ, कोई भी हो सकती है ना, सोचिए। अब ये एक तकलीफ है ना, एक मुसीबत है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बीमा का सबत अईदी को। जब भी कभी आपको माली उलझन आए, माली परेशानी आए, चाहे वो मुल्की हालात की वजह से हो, इंटरनेशनल वैल्यूज में हो, या आपके अपने पर्सनल कारोबार में हो, तो सोचिए कि वमा असाबकुम मिम मुसीबत इल्ला बिमा कसबत अईदीकुम। ये मेरा कसब क्या है जो मेरे हाथों से हुआ, तो अल्लाह ने मुझे पकड़ा। बस जब ये ख्याल आए, उसके बाद आपने चंद काम करने हैं, लिखिए 1 2 3। नंबर एक, इस गुनाह पर शर्मिंदा हो, कोई भी किया होगा ना, कोई आंख का गुनाह, कोई कान का गुनाह, कोई जुबान का गुनाह, कोई हाथ का गुनाह, गुनाहों के बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। सबसे पहले इस पे शर्मिंदा हो, पहली शर्त है ये। दूसरी बात, आप इस गुनाह को फौरन छोड़ दीजिए, ये ऐसी है कि गंदगी को हाथ लग गया, फौरन छोड़िए। और तीसरी बात, इस बात का अज़म कीजिए कि आइंदा इसको नहीं करूंगी। अगर इनमें से एक भी शर्त हट गई तौबा दुरुस्त नहीं होगी। चौथी चीज ऐड कीजिए कि अगर गुनाह का ताल्लुक किसी बंदे से हो, इंसानी मामलात, हुकूक उल इबाद, मामलात, डीलिंग, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया अद्दीन अल मामला, दीन तो मामलात का नाम है। आपकी मेरी नमाजें रोजों से नहीं मेरे असल का पता चलता, पता कब चलेगा? जब मेरा आपसे मामला पड़ेगा, मैं आपके साथ सफर करूंगी, हम साथ बैठेंगे, कोई रिश्ता नाता जुड़ता है, कोई किसी के घर आता है, कोई जाता है, असल बंदे का तब पता चलता है। तो अगर गुनाह का ताल्लुक किसी बंदे से हो तो इस गुनाह से तौबा के लिए फिर अगली शर्त है, और वो क्या है कि हकदार का आकर हक मारा है आपने तो अदा कीजिए, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया है तो उससे जाके माफी मांगी, और अगर मुल्क में कानून है तो जाकर हद लगवाइए, और किसी की गिबत की है तो उससे माफी तलब करें, और इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि दिल खुल जाएगा, और जब आपका गुनाह माफ, वो रीजन खत्म हो गई तो रिस्क के दरवाजे खुलेंगे, अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से देगा। इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तो माल और दौलत में बरकत है, व युमदिदकुम बि अमवालिम व बनीन, और मालों और औलाद में इजाफा कैसे होता है? एक तो यह है कि वो आंखों की ठंडक बनते हैं, बीवी के साथ जहनी हमाहंगी होगी, देखिए ये भी रिस्क होता है, घर में सुकून हो, और अगर शौहर बीवी का दिल ही नहीं लग रहा, एक दूसरे को देख ही नहीं सक रहे, बच्चे माँ बाप की बात ही नहीं सुन रहे, तो ये भी तो एक रिस्क की कमी है ना। तो ये रिस्क जो है ना, इसको सिर्फ मनी ना समझिएगा या इसको आटा चावल ना समझिए, मोहब्बतें भी रिस्क हैं और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ जीना भी एक रिस्क है। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला दलायल दे रहे हैं कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम इस्तगफार करो। करना क्या है, प्रैक्टिकल टिप्स पे आइए। ये तो पता चल गया कि अल्लाह ताला से रिस्क मांगना है, जाहरी तौर पे नहीं बातनी तौर पे भी, और हजरत नूह की दुआ भी हमने पढ़ ली कि फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, यकीन रखिए कि अल्लाह अल गफ्फार है, माफ करेगा, और इस्तगफार के सारे फवायद वो सामने रखते हुए करिए क्या, अल्लाह से दुआ करें। आप कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो बारिश तलब करने के लिए ये आयात पढ़ा करते थे, क्या युरसिलुस समा अलैकुम मिद्रारा, यकीन है ना हमारा अल्लाह ताला पर, तो फिर हमें इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। और इमाम अहमद, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा और हाकिम से रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से ये रिवायत हम तक पहुंची, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने कसरत से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी तलब की, अल्लाह ताला इसे हर गम से निजात देंगे, हर मुश्किल से निकाल देंगे, और इसे वहां से रिस्क मुहैया फरमाएंगे जहां से इसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। देखिए हमें यकीन है ना कि बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक कैरियर उनका डेवलप होगा तो जॉब मिल जाएगी, या अगर किसी को बिजनेस में लेके जाना है तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करके बच्चे को बिजनेस पे बिठाएंगे तो बरकत होगी, है ना ईमान? और ये करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसी तरह तौबा इस्तिगफार को इस वक्त अपने लिए एक पोटेंशियल बनाइए, कैपिटल है, कैपिटल कहते हैं वो पैसा जिससे कारोबार शुरू किया जाता है, तो आज से अपने लिए भी और अपने जवान होते हुए बेटों के लिए ये राज की बात लिख लीजिए कि जितना दिल दिमाग के शऊर के साथ अपने गुनाहों पे माफी मांगेंगे उतनी दुकान ज्यादा चलेगी, उतने कस्टमर ज्यादा आएंगे, थोड़े में बरकत भी होगी, पैसे देखने में चंद सौ ही होंगे लेकिन उसमें बरकत बहुत होगी। तो सवाल पैदा होता है कि करने का काम क्या है? नंबर एक, कसरत से तौबा और इस्तगफार, फिर गुनाहों से दूर हो जाइए, लीव द सिंस, अपने गुनाहों को पीछे कर दीजिए, इसलिए कि गुनाहों के साथ जो रिस्क आ भी जाता है ना उसमें बेबरकती होती है। तीसरा काम कीजिए कि आइंदा गुनाहों के करीब ना जाने का अजम करना है, और नेक्स्ट थिंग क्या है कि इस्तगफार और तौबा सिर्फ जुबान तक ही ना रहे, दिल की नदामत से शुरू कीजिए और अपने अमल की इसलाह की फिक्र कीजिए। सिर्फ जुबानी तौबा तौबा करना बेकार है, उसको तौबतुल कज्जाबीन कहा जाता है, और ऐसी तौबा कीजिए कि जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए आपसे भी और मुझसे भी, क्योंकि जितना ज्यादा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बेहतर करते जाएंगे ना उतना अल्लाह की रहमत से हमारे लिए आसानियों के मामले होंगे। फिर सवाल पैदा होता है कि और क्या करें, तो दुआएं कीजिए, दुआ के जरिए से हमारे गुनाह माफ होंगे, यानी गुनाहों की माफी की दुआ। देखिए आप क्या कहते हैं, अल्लाह रिस्क दे दे, अल्लाह रिस्क दे दे, अल्लाह ने रिस्क दे दिया, आपने खा लिया पी लिया, पता ही नहीं चला, एकदम गाड़ी किसी साइकिल से टकराई, 10,000 का बिल बन गया। हुआ क्या? गौर से समझिएगा, बहुत ही बारीक बात है। और बात यह है कि आपको रिस्क मिला लेकिन एक्स्ट्रा खर्चा भी आ गया। अब जब एक्स्ट्रा खर्चा आपके ऊपर आया ना, तो उसके बाद क्या हुआ? आपके माल में से बरकत चली गई। जब आप अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे ना, जब अल्लाह ताला से कहेंगे कि मेरे मालिक तू मेरे लिए इस रिस्क में बरकत दे, तो उसके लिए आपको दुआ मांगनी पड़ेगी, इस्तग़फार की दुआ। बहुत ही खूबसूरत दुआ है जिसको सैयदुल इस्तग़फार कहते हैं, सबसे बड़ा इस्तग़फार। और उससे क्या होता है कि बंदा अल्लाह के सामने अपने आप को कमजोर महसूस करता है। सैयदुल इस्तग़फार जिसकी बहुत ही फजीलत है, हत्ता कि ये कहा गया कि सुबह को भी पढ़ी और शाम को भी अगर पढ़ ली तो अल्लाह ताला फिर ऐसे बंदे के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं कि जो उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। इस नियत से इस दुआ को दोहराइए, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी वना अब्दुका वना अला अहदिका ववादिका मस्ततातु आऊज़ु बिका मिन शर्री मा सनातु अबू लका बिनेमतिका अलैया बाबू बिजम्बी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता। ऐसे लगता है कि अपने गुनाह के बोझ में धंसा हुआ एक शख्स है और उसको गम लग गया, फिक्र लग गई है इस बात की क्या कि मैंने अपने रब को राजी करना है। बिच बिच जाता है कि अल्लाह गुनाह का एहसास मुझे सोने नहीं देता, मुझे रोने नहीं दे रहा, मेरी जिंदगी में इस चीज को तू पैदा कर दे कि मैं अपने आप को तेरे सामने पेश कर दूं। कसरत से पढ़िए, और इसको इस नियत से भी आपने पढ़ना है इंशाल्लाह ताला कि मैंने अपने रब से रिस्क लेना है। इंशाल्लाह जूं ही गुनाह माफ हुए, वजह दूर हुई, तो अल्लाह की रहमत से फिर रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। तो कसरत से मांगिए, सुबह में एक बार पढ़ लीजिए, शाम को एक बार पढ़ लें, और जब भी रिस्क की कमी का कोई एहसास हो ना, उस वक्त भी इसको ये सोच के पढ़ें कि अल्लाह तेरे नबी की बात और तेरे कलाम से ये बात पता चल गई है कि रिस्क की कमी की वजह गुनाह है, तो मैं अपने गुनाहों से माफी की तलब में ये दुआ मांग रहा हूं। इंशाल्लाह आपका दिल गवाही देगा। जब किसी से नाराजगी होती है ना, तो आप रूठ जाते हैं, बस लोग बात नहीं करते, बस जरा गुस्से में चीखने लग जाते हैं, बस थोड़े थोड़े बर्तन पटकते हैं कि बेगम ने कुछ ज्यादा ही ले लिए हैं तो अब थोड़े से कम कर दूं। एक और इजहार भी है, जब आप अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं ना, तो आप सर सजदे में रख कर रोना शुरू कर देते हैं। देखिए कितनी मोहब्बत भरे लफ्ज हैं, ए अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूं और मैं तेरे अहद और वादे पर कायम हूं, जिस कदर ताकत रखता हूं मैंने जो कुछ किया इसके शर से तेरी पना चाहता हूं, और अपने आप पर तेरी नेमत का इकरार करता हूं और अपने गुनाह का एतराफ करता हूं, बस मुझे बख्श दे क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को नहीं बख्श सकता। इस एहसास के साथ अल्लाह के आगे अपना ताल्लुक रखिए, देखिएगा अल्लाह ताला आपकी जरूर सुनेगा। अल्लाह ताला बंदे को बहुत कुछ देता है, और जब बंदा शर्मिंदगी के साथ से डूबता है तो याद रखिए फिर अल्लाह उसको शर्मिंदा होने नहीं देता। ये तो हम अकड़ते हैं ना, बंदा गुनाह करे और अकड़े इस पे पकड़ है, गुनाह करे और उसकी दलीलें दे इस पे पकड़ है। पंजाबी का शायद एक मुहावरा है कि चोर ऊपर से चित्तर, उर्दू में कहते हैं ना चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये गुनाह है। सीना पे हाथ रख के गुनाहों को साबित कराएंगे ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह हमने एक बात सीख ली है, अब इस पे अमल करना है, और वो क्या है कि मालिक मुझे तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमा। और इस पे चंद जुमले ही बोलती हूँ क्योंकि हमने अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, 30 पारे हैं, कोई थोड़ी चीज़ें नहीं हैं। बिलीव मी, एक समंदर भी छोटा है इस कलाम इलाही के मुकाबले में। तो इंशाल्लाह आपका दिल आपको बताएगा क्या गलत है क्या नहीं। फिर गुनाहों की किस्में होती हैं, ज़ाहरी बातनी सिर्री बातनी कह लीजिए, कबीरा सगीरा, अमद इरादे से या दूसरे सजदे में, दुआओं में जो अल्लाह के नबी ने सजदे की दुआएं सिखाई हैं उसमें बड़ी प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू वजिल्लहू अव्वलहू व आखिरहू। तो आपको इस पूरे सफर में हम मुख्तलिफ दुआएं सिखाएंगे, तो इंशाल्लाह तौबा इस्तगफार की बहुत सारी दुआएं हैं जो हम आने वाले दिनों में सीखते ही जाएंगे। इस वक्त इस सोच के साथ कि आज मुझे आपको एक सिरा मिल गया, हमारे हर भाई के लिए पैगाम है, क्योंकि मैं रिस्क को असल में मर्दों का इशू समझती हूँ। वो बाप हैं कि भाई हैं कि बेटे हैं, कोई भी मर्द है। अल्लाह ने औरतों को इन जिम्मेदारियों में नहीं डाला। अगर कोई औरत कमा रही है तो वो कह लीजिए कि अपने मर्द पे एहसान कर रही है। और याद रखिए कि सिर्फ मर्द रिस्क हलाल के ऊपर कोशिश कर लेंगे, गुनाहों से माफी पे आसानियां आ जाती है ना, तो बाकी सारे मामले भी आसान हो जाते हैं। जिस चीज पे इस टॉपिक को क्लोज करूंगी ताकि हम अगली चीज पे जा सकें, वो क्या है? शर्मिंदगी का एहसास। पसीनों पसीन हो जाए, अकेले में बैठे और कोई वीडियो देखे, उसका असर दिल दिमाग पे आता है? बिल्कुल आता है। आप अपने गुनाहों की वीडियो खुद देखें और उस पे अल्लाह से माफी मांगे, और कयामत के दिन जब हमारे गुनाहों की वीडियोस मैदाने हशर में चल रही होंगी, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? इसको सोचिए और यहां बैठे तौबा कीजिए। एक छोटा सा वाक्य सुना देती हूँ ताकि हमारे दिल पसीज जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, बारिश नहीं हो रही, और जब बहुत दिन बारिश ना हो तो अल्लाह ताला ने एक तरीका सिखाया, आज इसको सलातुल इस्तस्का, पानी तलब करना। पिछले दौर में भी इसके कुछ तरीके थे, खुली जगहों पे चले जाते हैं और वहां जाकर अल्लाह ताला से दुआएं की जाती हैं। हजरत मूसा लोगों को साथ लेकर निकल गए, जाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि मालिक खुशसाली है, कहत पड़ गया, बारिश बरसा दे। चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे और अल्लाह वही भेजता है, वही के जरिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया कि ऐ मूसा, इस महफिल में एक बड़ा ही गुनाहगार शख्स बैठा है, उससे अल्लाह इतना नाराज है कि उसकी वजह से किसी की भी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो लिहाजा बारिश नहीं होगी। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने बात को लोगों के सामने ढके छुपे लफ्जों में दिया कि भाई, हम में से कोई गुनाहगार बैठा है और उसके गुनाहों की वजह से अल्लाह नाराज है, तो बारिश नहीं होगी। अब आप बताइए, ना तो अल्लाह ताला ने नाम बताया उस शख्स का और ना मूसा ने उसका जिक्र किया, और बुराइयां और गुनाह बताने में यही खूबसूरत अंदाज है। कुछ मुबल्लिगीन बात करते में इतने डायरेक्ट हो जाते हैं कि वो सामने वाले के जमीर को जगाने की बजाय उसकी अना को बेदार कर देते हैं। और अना सोया हुआ शेर है, ये भी जम है, अना सोया हुआ शेर है, इसको सोया रहने दे। हम दूसरों को कह दो गुनाहगार, ओ काफिर, ओ जहन्नमी, ओ बेनमाजी, नाउसुबिल्ला, आपकी मेरी ये जुरत नहीं होनी चाहिए, ना अपने घर के बच्चों और मर्दों और औरतों को, और ना दीन के नाम पे आप इस तरह के कड़वे जुमले बोले। अल्लाह ने तो पूरे कुरान में नहीं कहा ऐसा कोई अंदाज इख्तियार किया। तो बहरहाल पर्दा पोशी अल्लाह की आदत है। गाफिरुज़्ज़म्बि काबिलत्तौब, सूरत गाफिर की इब्तदाई 4 आयतें पढ़ लीजिए, आपको अल्लाह सुभान अल्लाह का मुकाम समझ आएगा। बहरहाल अब ना अल्लाह ने बताया ना मूसा ने बताया, लेकिन सूरत कयामत में अल्लाह ताला ने एक हकीकत खोली है कि बलिल इंसान अला नफ्स ही बसीरा, बल्कि इंसान खुद को खूब जानता है। वलहु अल्का माजीरा, दूसरों के सामने जितने मर्जी उजर डालें। उस शख्स को सूझ गई कि ये मैं ही हूं, और अक्सर लोग कुरान की क्लासेस के बाद कहते हैं आज की सारी आयतें मेरे लिए थी, हालांकि पढ़ाने वाले के बहमो गुमान में भी नहीं होती बातें, लेकिन वाकई अल्लाह ने आपके मेरे अंदर एक चौकीदार, एक गार्ड मैन, एक सिक्योरिटी गार्ड लगाया जिसका नाम है नफ्से लवामा, मलामत करता है। वहां बैठे बैठे उस शख्स ने क्या बात की कि अल्लाह, मैं इतना बदबख्त हूं कि मेरी वजह से सबको तूने महरूम कर दिया। और इस पे नोट कीजिए, बाज दफा घर में कोई एक ही शख्स ऐसा होता है जिसके गुनाहों की नहुसत की वजह से रिस्क और बरकतें निकल जाती हैं, तो वहां भी ऐसा ही था। उसने तौबा की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा पर्दा रख ले, आज के बाद ये गुनाह नहीं करूंगा। आप मजमे में बैठे किसी शख्स को नहीं पता कि किसका राबता किधर जुड़ा हुआ है और किसकी डायरेक्ट डायलिंग किससे। चंद मिनट गुजरे तो बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला, अभी तो आपने कहा कि बारिश नहीं होगी क्योंकि गुनाहगार है, और अब बारिश शुरू हो गई, तो सुन लीजिए अल्लाह सुबहान तआला की शान। कहा, मूसा तुझे क्या पता, उस बंदे ने तो यहां बैठे बैठे तौबा की, मैंने उसको माफ कर दिया, और माफ किया तो बारिश हो गई। अल्लाह अकबर, इन्नहु काना गफ्फारा। लाड में आकर मूसा ने कहा, अल्लाह ताला उसका नाम तो बता दे। क्योंकि हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है अंदर की बात सुनने की, इनसाइट क्या है, जरा अंदर के राज जाके देख के आते हैं क्या हो रहा है। जब आप सुनिए, कह मूसा, मैंने तो उस वक्त भी तुझे उसका नाम नहीं बताया जब वो 40 साल का गुनाहगार बैठा था, तो अब तो उसने तौबा कर ली, अब तो वो मेरा बन गया, अब तुझे उसका नाम कैसे बता दूं। अल्लाह अकबर कबीर, गाफिर अज़्ज़म बिकाबिल तौबी। तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की शर्मिंदगी और आजजी के साथ दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी भी जिंदगी में कोई भी जो कमी है, जो मेरा रिस्क कम है मोहब्बतों का, औलाद का, माल का, तो उसको मेरे गुनाहों की माफी के साथ ही डाल दे और मुझे शर्मिंदगी दे, और कभी किसी को आर ना दिलाए, खुद को भी आर ना दिलाए। नफ्स बहुत घोड़ा होता है, बस पिचकाते जाए, प्यार प्यार से टेम कर करके मोहब्बत के साथ इसको नेकियों की तरफ ले आए। और पिछले अंबिया कराम सब ने अपनी अपनी कौमों को इसी बात की दावत दी थी। कुरान में इसके बहुत सारे दलाइल हम पढ़ेंगे।